Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Sri Vibhushit Pratasmaraniya Mahamandaleshwar प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप प्रिय मधुर बाबूजी समस्त भगवान की कथा का श्रवण करने वाले श्रोताजन कठोपनिषद के अंतर्गत बालक नचिकेता द्वितीय वल्ली में प्रश्न कर रहे हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। प्रश्न हमारे अंतर मन की अभिव्यक्ति होती है। भगवान ने कहा परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के पाने के प्रति तीन कारण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सबसे पहले गुरु के पास जाने के बाद अभिवादन, अपने भीतर की विनम्रता, अपने भीतर की शिष्टता व्यक्त करने का तरीका है प्रणाम करना। प्रणाम माने विनम्रता, प्रणाम माने अपने अहम का विसर्जन और गुरु के श्रेष्ठता की स्वीकृति। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है जो गुरु हैं, भारी हैं, श्रेष्ठ हैं, और प्रणाम करने का अर्थ है उनके श्रेष्ठत्व की स्वीकृति। उसके बाद दूसरा भगवान ने कारण बताया सेवा। प्रणाम करने के बाद सेवा, सेवा माने समर्पण है। सेवा माने ज्ञान को पाने का मूल्य चुकाना है। ज्ञान को पाना है, साधना पानी है, आत्मज्ञान को पाना है। बिना मूल्य चुकाए आत्मज्ञान पाना संभव नहीं है। यहां मूल्य माने सेवा, और सेवा का अर्थ हमारे आंतरिक गुणों का विकास भी है। तन मन से जब गुरु की सेवा साधक करते हैं तो उनके आंतरिक गुणों का विकास होता है। शास्त्र ने कहा तन, मन और धन, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सेवा का प्रथम जो साधन है वो हमारा तन है। विरक्त गुरु है या सद्ग्रहस्थ, उसी के अनुसार अपने शरीर से सेवा करना, मन से उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रति सद्भाव मन में रखना, और धन से सेवा से हमारे धन की भी शुद्धि होती है और धन के प्रति निरासक्ति भी पैदा होती है। किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के चरणों में एक फूल भी समर्पित करते हैं, उसमें भी वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य न हो तो हमारे हाथ से एक फूल भी नहीं छूटेगा। इसलिए धन से सेवा का अर्थ है धन के प्रति निराशक्ति, और धन संपूर्ण हमारी गतिविधियों का केंद्र है। धन से बहुत सारी चीजें हम खरीद सकते हैं, धन से हम बहुत सारी आसक्तियों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए धन को अनर्थ भी बोला है। धन को सुख और शांति में बाधा भी माना है। श्रुति ने उद्घोषणा करते हुए कहा, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन। हम बहुत सारे ऐसे उपद्रव पैदा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा धन हो, हम धन का यदि दुरुपयोग करें तो वही धन हमारे अशांति के प्रति कारण बन सकता है। इसलिए धन के प्रति निराशक्त होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास धन हो लेकिन धन के प्रति आसक्ति ना हो। धन के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो धन से जो बहुत सारी आसक्तियों को हम निर्मित कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। ये छोड़ने की प्रक्रिया है। शास्त्र हमें दान में ले जाता है, दान के लिए कहता है। दान का अर्थ यह नहीं कि हमें दान करने से स्वर्ग मिलेगा, और हमारे दान से तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत बड़ी चीज है, और उस स्वर्ग को पाना है तो उसका आप क्या भगवान के मंदिर में जाके 10 रुपए चढ़ा लेंगे, तो 10 रुपए से तो आप हरिद्वार भी नहीं जा सकते हो, तो आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे। आप 500 रुपए भी भगवान के मंदिर में डाले तब भी आप हरिद्वार नहीं पहुंच सकते 500 रुपए में, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी त्याग की जरूरत है, बहुत बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत है, और वहां यज्ञ भी त्याग की अर्थ में है। 100 यज्ञ जो इस धरा का आदमी करता है उसको स्वर्ग का आसन मिलता है, शास्त्र में कहा है। बहुत मजेदार बात है वो। एक आदमी अपने जीवन में 100 यज्ञ करे, वो कितना बड़ा पुरुषार्थी होगा, वो कितना बड़ा पराक्रमी होगा, कितना बड़ा धनवान होगा। और वो यज्ञ भी छोटे मोटे नहीं, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ का अर्थ था सर्वस्व का दान। आपके पास जो भी चीजें हैं सारी चीजें दान कर देना है, कितना बड़ा त्याग। और यज्ञ करते समय क्रोध नहीं करना है, सामान्य आप सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो वहां पर भी आपको संयम की आवश्यकता है। आपको सत्यनारायण का व्रत करना है, वहां पर भी आपको संयम रखना पड़ता है। पूजा के पहले आप नहीं खा सकते हैं, और जब तक पंडित जी पोथी नहीं पढ़ते तब तक आपको नहीं खाना है। जब हम बाल्यावस्था में सत्यनारायण की पोथी सुनते थे तो हमको उठने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती बैठाते थे। वहां संयम की जरूरत है। और वहां पोथी में ये भी लिखा है कि कथा सुनते समय जो वहां कथा के पात्र उठे तो उन्हें क्या मिला, बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां उनके जीवन में आई। तो आप कल्पना करो कि सत्यनारायण व्रत में इतने नियम, इतने कानून, एक छोटी सी कथा है, वो 1 घंटे की कथा भी नहीं होगी, और आपका पूरा दिन आत्मसंयम में एक सात्विक सोच में गुजरता है, और आप राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना, ईमानदारी का पालन करना, क्रोध नहीं करना, जलन घृणा ईर्ष्या का परित्याग करना, खाने पर नियंत्रण, बोलने पर नियंत्रण, और वो यज्ञ कोई एक दिन का नहीं, महीनों चलने वाला, वर्षों चलने वाले। आप कल्पना करो कि इस धरा का कितना आत्मसंयमी आदमी होगा, वो जो 100 यज्ञ करने वाला, एक यज्ञ में ही इतनी सारी चीजें हैं। और अपने जीवन में जिसने 100 यज्ञ किए वो स्वर्ग को पाने वाला आदमी माना गया। मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी का जो सर्वश्रेष्ठ आदमी, 100 यज्ञ करने वाला, और वो कितना बड़ा त्यागी होगा। वो वहां सर्वश्रेष्ठ चीज त्याग में है। आप कोई भी चीज आप चीज करेंगे तो वहां त्याग की आवश्यकता है। आप यज्ञ भी करेंगे तो त्याग की आवश्यकता है। आप कोई भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो वहां त्याग की आवश्यकता है। चाहे आप बहुत छोटी सी चीज छोड़ रहे हैं या बहुत बड़ी, वो छोड़ने का जो शास्त्र विधान करता है वहां स्वर्ग ले जाने के अर्थ में नहीं है। हमारे भीतर उस चीज के प्रति महत्व को कम करना होता है। जितना आदमी त्याग करता है धन का, उतना ही धन के प्रति उसके मन में अटैचमेंट कम होता जाता है। अन्न दान व्यक्ति करता है तो अन्न के प्रति जो अटैचमेंट है वो कम होता जाता है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन आपके थाली में, कोई उसी समय आपके पास आया तो आप खिलाओगे कैसे उसको? त्याग न होगा तो, स्वाद के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति न हो तो आप खिला नहीं सकते। आप सोचेंगे यहां तो एक ही रोटी है, बहुत थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ा सा चावल है, ये मैं दूसरे को कैसे दूं? बहुत सारे तर्क हम निर्मित करेंगे वहां, बहुत सारी चीजें ऐसी खड़ी करेंगे कि नहीं देना उचित है, और वो सारी चीजें हम खा जाएंगे। लेकिन आपके अंदर यदि पागलपन नहीं, स्वाद के प्रति पागलपन नहीं है, खाने के प्रति पागलपन नहीं है, तो आप कहोगे आओ भैया एक रोटी है, बहुत बड़ी है, हम आधा आधा खा लेंगे। आप कोई भी जो धर्म का काम है वैराग्य के बिना आप नहीं कर सकते। दूसरे के अस्तित्व को स्वीकृति, अस्तित्व को स्वीकार करना वैराग्य के बिना संभव नहीं है। दूसरे के विचारों को स्वीकार करना ये वैराग्य के बिना संभव नहीं है। आदमी अपने विचारों को भी कहां छोड़ता है? अपने विचारों के प्रति आदमी आसक्त होता है, आदमी अपने आग्रह दुराग्रहों के प्रति भी आसक्त होता है। कई बार आपसे बातचीत करने वाले आपके मित्रजन अथवा स्वजन अपने ही विचारों को पकड़ के बैठे रहते हैं, अपने ही आग्रह दुराग्रहों को पकड़ के रखते हैं। मालूम है उसको ये बात सही नहीं है, उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही हूं, छोड़ना नहीं चाहता है। वह अहंकार आड़े आता है, वह आसक्ति अपने व्यक्तित्व का जो व्यामोह आड़े आता है। इसलिए नारायण अपने दुराग्रहों विचारों का परित्याग करने के लिए भी वैराग्य चाहिए। हमारी संपूर्ण सद जीवन का जो मूल है वो वैराग्य। और ये जो सेवा का जो भाव है ना, वैराग्य मिल जाता है आदमी को। दान तन मन धन से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, अपने से बड़े जनों की सेवा करते हैं, तो वो चीज हमें वैराग्य मिले जाती है। दान तन से मन से धन से सेवा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, हम परमात्मा के पाने योग्य बनना शुरू हो जाते हैं। ये जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है। और तीसरी चीज भगवान ने कहा, अब प्रश्न उठता है, प्रश्न उठाया नहीं जाता है। हमारे जीवन की समस्याओं को यहां निर्मित नहीं किया जाता है, समस्या अपने आप निर्मित हो जाती है। आपको कोई कहे कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ करो, आप भगवान की इच्छा करो, आप कैसे कर सकते हैं? इच्छा तो करने की चीजें नहीं, इच्छा कृति साध्य नहीं है। आप इच्छा को पुरुषार्थ से प्रयत्न से पैदा नहीं कर सकते हैं। आप भूख लगा नहीं सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करो भूख आप नहीं लगा सकते। भूख को लगाने की स्वतंत्रता हमारे भीतर नहीं है, अपने आप भूख लग जाती है, प्यास अपने आप लग जाती है, हम निर्मित नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से जब भूख लगती है तो हम भोजन चाहते हैं, प्यास लगती है तो पानी चाहते हैं। यह हमारा प्रश्न है, हमारी समस्या है, और वो प्राणों से निकलती है। भूख हमारे बिल्कुल अंदर से, एक बार भूख लगने के बाद और कोई उपाय नहीं होता है, केवल भोजन। परमात्मा को पाने की इच्छा हमारे भीतर से निर्मित हो जाए, वही तो प्रश्न है। ऊपर से आरोपित ना हो, आरोपित प्रश्न का कोई मूल्य नहीं है, बौद्धिक प्रश्न का भी कोई मूल्य नहीं है। कोई आदमी बहुत बुद्धिमान और वो परमात्मा के बारे में बहुत सारे प्रश्न कर सकता है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। एक औपचारिकता है, एक सोच है, एक विचार है, उसके साथ प्राण तत्व नहीं है, कोई वेदना नहीं है। बौद्धिक प्रश्नों में कोई वेदना नहीं होती है। आप पूछ रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है, जिज्ञासा वशात पूछ रहे हैं, लेकिन एक जिज्ञासु भगवान का भक्त मीरा जैसा जब प्रश्न करता तो उन प्रश्नों में व्याकुलता झलकती है। परिप्रश्न, इसी को भगवान ने बोला है। ये तीसरा क्रम है परिप्रश्न का, कि मानवीय मन की सहज विशुद्ध अंतकरण से निकली हुई समस्या, ये परिप्रश्न। यहां पर बालक नचिकेता अपने मन का प्रश्न रख रहे हैं, परिप्रश्न है। और प्रश्न जो होता है हमारे अंतर मन की, हमारे अंतर मन की अस्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हम क्या है, यदि जानना हो तो हमारा आचरण हमारे जानने के प्रति कारण है। हम दूसरे के प्रति बोधगम्य नहीं है। हम क्या है दूसरा कैसे जान सकता है। लेकिन जानने का एक उपाय है, और वो उपाय है हमारा आचरण, हमारी क्रियाओं की अभिव्यक्ति। हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, हमारी प्रत्येक क्रियाएं गतिविधियां क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंतर मन की, हमारे होने की अभिव्यक्ति है। हम अंदर यदि हैं तो वैसे ही बाहर होंगे। यदि हम अंदर अहंकारी हैं तो हम बाहर विनम्र नहीं हो सकते। हमारे भीतर की अभिमानी जो मनोवृत्ति है हमारे आचरण में बलात् हठात् व्यक्त होती जाती है। रास्ते से गुजरता हुआ व्यक्ति भी आप देख के बता सकते हैं कि बहुत अभिमानी है। आपको भी रामायण महाभारत के पात्रों को देखना, आप राम को अपने सामने से गुजरते हुए देखेंगे तो आपको अलग मालूम पड़ेगा, और वही रावण गुजरता है तो आपको मालूम पड़ता है। बिना बोले आप थोड़ी सी दृष्टि रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आने वाला व्यक्ति, सामने से गुजरने वाला जो व्यक्ति है, कि राम है कि रावण है, ये कृष्ण है कि कंस है, दोनों की राशि एक है, बड़ी मजेदार। दोनों की राशि एक है, रावण की भी राशि रस से शुरू होती है और राम की भी राशि रस से शुरू होती है। कंस की भी राशि क से शुरू होती है और कृष्ण की भी राशि क से शुरू होती है। दोनों की एक राशि, चालू नाम एक राशि, प्रथम अक्षर एक है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर मालूम पड़ता है। एक अहंकार की प्रतिमूर्ति और दूसरा विनम्रता की प्रतिमूर्ति, आपको उनके आचरण से ही मालूम पड़ेगा। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व उनके क्रियाओं में उतर आता है। हम कितना भी दबा के रखें, एक बड़ा मजेदार दृष्टांत महात्मा लोग सुनाते हैं, आप अपने स्वभाव को कैसे छिपाओगे? अंतर मन क्रियाओं में न उतर आए, आप इसको कैसे दबाओगे? एक मंदिर में पुजारी रहा करते थे, उनको आदत थी शाम को 4 बजे उठने की, दोपहर को आराम करते, शाम को 4 बजे करेक्ट उठ जाते, और उन्होंने अलार्म लगा के रखा था घड़ी में, और बड़ी घंटी बजती थी, वो 4 बजे उन्होंने अलार्म लगा दिया। अचानक हुआ क्या कि वहां सत्संग चल रहा था बहुत बड़ा, हजारों लोग थे वहां पर सत्संग सुनने के लिए, पुजारी जी सो रहे थे, उसी समय कोई व्यक्ति आया सत्संगी, चोर मनोवृत्ति का था, पुजारी की घड़ी देखी उन्होंने, बहुत सुंदर घड़ी मालूम पड़ी, करीब 3 बजे के करीब वो आदमी गया और वो घड़ी उठा ली, बहुत प्रसन्न हो गया वो, और प्रसन्न होकर के वो घड़ी उन्होंने अपने झोले में रखी और जा करके सत्संग में बैठ गया। 4 बजे पुजारी जी उठे, देखे घड़ी नहीं, घड़ी नहीं, अब हजारों की संख्या में वहां श्रोता लोग, किसने लिया होगा कोई पता नहीं, और जैसे ही 4 बज गए और मधु बाबू घंटी बजना शुरू हो गई और बड़ी जोर जोर से, अब वो आदमी वो झोले को दबा रहा था, वो बहुत दबा रहा था कि वो, कई बार ऐसा होता है कि आदमी मोबाइल ले आता है और जो वो घंटी बजने लगती है, और कई बार आदमी को मालूम नहीं पड़ता इसका बटन कहाँ है, साइलेंट मोड वाला परेशान हो जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, बार बार घंटी आ रही है और वो साइलेंट मोड का बटन मालूम नहीं है, परेशान हो जाता है, वो ढूंढता रहता है। बेइज्जती का सवाल है, असभ्यता का सवाल है, आदमी सोचता है कि देखो इतने सारे लोगों के बीच में मालूम नहीं, अरे मोबाइल है तो साइलेंट मोड पर करो, बंद करो, मालूम नहीं पड़ता है। पर अगल बगल वाले को बोलता है भैया इसका बटन कहीं है, इसका बटन कहीं है क्या? ये स्वभाव है, ये स्वभाव की अभिव्यक्ति है, आप उसको कितना भी दबाओ उसमें चाबी भरी है, अब वो प्रकट होगी, हमारे अंतर मन में जो है वो प्रकट होगा, इसलिए आपने को ऊपर से नहीं दबाना है, ऊपर से सफाई नहीं करना, अपने को अंदर से सफाई करनी है, हमारे मन से शुरुआत करना है। इसलिए आपको कहा जाता है आत्मा वाले श्रोतव्यो मंतव्यो निविध्यासितव्य, आपको सुनना है कान से और आचरण का प्रारंभ करना है मन से, मन से सुधरे बिना तन से सुधरना संभव नहीं है। हम बाहर अपने आप को कितना भी आवरण आच्छादित कर दे, लेकिन अंतर मन में यदि गंदगी है तो हमारी क्रियाओं में आएगी, हमारे वाणी में गंदगी आएगी, यह अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। हमारे जो प्रश्न हैं ये सूचना देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मांग बता देती कि हम क्या चाहते हैं। एक सूत्र है कठोपनिषद का ही, बहुत सुंदर, यो यदिच्छसि तस्य तत्, बोले आप जो चाहते हैं ना आप वही होते हैं, आपकी मांग जो है आप वही होते हैं, आप क्या है, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, आपको जानना है तो उसका थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर यही है हमारी चाह क्या है, हमारी चाह यदि अच्छी है तो हम अच्छे हैं और चाह यदि बुरी है तो बुरे हैं, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे चाह में उतर आता है। परमात्मा की चाह है तो समझना चाहिए हमारे भीतर वो परम तत्व परमात्मा को पाने की योग्यता है, और हम संसार के पदार्थों को चाहते हैं, हम भोग चाहते हैं, जलन चाहते हैं, ईर्ष्या चाहते हैं, घृणा चाहते हैं, प्रतिशोध चाहते हैं तो हमारे अंदर वही सारी चीजें हैं। यहां बालक नचिकेता ने चाहा, क्या चाहा? दुनिया की सारी चीजें रखी आचार्य यम ने, उसके बाद भी बालक नचिकेता ने कहा हमको नहीं चाहिए। इस दुनिया में आपको बेईमान बनाने वालों की कमी नहीं है और हम भी बेईमान बनने के लिए भी तैयार हैं। दुनिया हमारे वासनाओं को भड़काती है और हम भड़कने के लिए भी तैयार हैं। अब वह धैर्य की जरूरत है, संयम की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहने की जरूरत है। और बालक नचिकेता के जीवन में सारी चीजें हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अटल भाव। उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए और आत्मसंयम की चरम सीमा, आत्मसंयम की कितनी चरम सीमा। तीन दिन तक बालक नचिकेता यमलोक में आचार्य यम के महल में रहे, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, आत्मसंयम की पराकाष्ठा, वैराग्य इतना। आचार्य यम ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, इस पृथ्वी लोक का साम्राज्य, धन संपदा, शादी विवाह, पुत्र पौत्रान वृणेश्व। बोले आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, हमको तो केवल परमात्मा चाहिए, हमें तो केवल आत्मज्ञान चाहिए, वैराग्य की परिसीमा और जिज्ञासा जिसकी कोई सीमा नहीं ना रहे। आज उनके भीतर से सारी चीजें प्रकट हैं, परमात्मा को पाने की सारी चीजें प्रकट हैं, अंतर मन की अभिव्यक्ति है। प्रश्न बहुत महान प्रश्न उन्होंने किया, वैराग्य के साथ प्रश्न किया। ये केवल प्रश्न नहीं है, बालक नचिकेता का केवल प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न के मूल में वैराग्य, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, लक्ष्य की अटलता, सारे गुणधर्म, पुरुषार्थ की भावना। बालक नचिकेता के प्रश्न को सुनकर समझ गए यम, बहुत प्रसन्न हुए, बीच में उन्होंने प्रशंसा भी की। और अब बालक नचिकेता अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। बालक नचिकेता ने देखा कि गुरुदेव तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा करते जा रहे हैं। कई बार आदमी प्रशंसा को ही अंतिम सत्य मान लेता है, कई बार साधक प्रशंसा को ही समझ लेता है कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं महान बन गया। आपकी कोई बड़ाई करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अंतिम अवस्था में हैं, आप पूरे हो चुके हैं। बालक नचिकेता को मालूम है मैं तो एक साधक हूं, अभी साधना का प्रारंभ कर रहा हूं मैं, जो अंतिम सत्य परमात्मा को मैंने पाया नहीं है। उन्हें अपनी योग्यता का पता है और जिसको अपनी योग्यता का पता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अयोग्य व्यक्ति को योग्यता का भाव उसके व्यक्तित्व को खा जाता है, ध्यान देना। अयोग्य व्यक्ति के मन में जब योग्य होने का भाव पैदा हो जाए तो उसका व्यक्तित्व संपूर्ण वो भावना ही खा जाती है। योग्य व्यक्ति को योग्यता का भी भाव उस व्यक्ति को अभिमान में ले जाता है और अयोग्य व्यक्ति को योग्य होने का भाव उसको कभी योग्य नहीं होने देता है।